عزیزان من، ہم نے گفتگو کا سلسلہ یہاں پر چھوڑا تھا کہ انسان کے اندر قلب شریف ترین چیز ہے. قلب کا کام کیا ہے؟ قلب کا کام یہ ہے کہ قلب لا محدود کو درک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. دیکھیے ایک بڑا، اس کو کوشش کیجیے گا محسوس کریں کہ ہر چیز کے اللہ نے الگ ڈیٹیکٹر رکھا ہے. آنکھ کان چاروں انگلیوں کا فاصلہ ہے، ناک میں اور آنکھوں میں تین انگلیوں کا فاصلہ ہے، ناک میں اور زبان میں دو انگلیوں کا فاصلہ ہے. اتنے قریب ہونے کے باوجود جو کام ناک کر سکتی ہے وہ زبان نہیں کر سکتی، جو زبان کر سکتی ہے وہ آنکھیں نہیں کر سکتی. جس چیز کا جو ڈیٹیکٹر ہے، جس چیز کو درک کرنے والی جو چیز ہے، اسی سے اس کو معلوم کیا جا سکتا ہے. قلب کی شرافت یہ ہے، قلب کا مقام یہ ہے کہ قلب لا محدود کو درک کر سکتا ہے. ہمارے اندر جو کہیں پہ بھی، کسی بھی جگہ پر ہمارے اندر، فرض کریں اکانومسٹ جو ہیں، ایک اقتصاد کے علم کے ماہرین، وہ کہتے ہیں انسان کے اندر لا محدود خواہش آتا ہے. اب یہ ایک بحث ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں ہونی چاہیے، ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. جس نے ہمیں لا محدود خواہشات جس نے ہمارے اندر رکھی ہیں، یہ ناممکن ہے کہ اس نے ان کو پورا کرنے کے لیے کوئی مطلوب نہ رکھا ہو. غلطی اس چیز میں نہیں ہے کہ انسان کے اندر لا متناہی خواہشات ہیں، غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم ان لا متناہی، ان لا محدود خواہشات کو محدود چیزوں سے پر کرنے کی کوشش کریں. یہ غلطی ہے نا، اس لیے کہ اگر لا محدود خواہشات کو کوئی چیز پر کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی، کبھی بھی نہیں کر سکتی، کہ وہ لامحدود ہے. ہر شے جو محدود ہوگی وہ کبھی بھی لامحدود کو پر نہیں کر سکتی. اب جب ہم، اب اسی کو آپ تھوڑی سی دیر کے لیے تصور کریں کہ اگر میرے اندر لامحدود خواہشات ہیں تو میرا مطلوب کون ہونا چاہیے؟ کیا چیز مطلوب ہونی چاہیے؟ وہ چیز مطلوب ہونی چاہیے جو خود لامحدود ہو. میری لامحدود خواہشات کو ایک لامحدود ہی پورا کر سکتا ہے. اب اس مرحلے کو اگر کراس کر لیا تو اب دوسرے مرحلے میں آئیں اور یہ تلاش کریں کہ کائنات میں لامحدود کیا ہے. تو جب آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کائنات میں لامحدود خدا کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. تو اصل میں ہمارے قلب کا مطلوب خدا ہونا چاہیے، بس وہ خواہش غلط نہیں ہے، اس کے مطلوب کے معاملے میں ہم غلطی کر جاتے ہیں. اگر ہم محدود چیزوں کو، ہم سمجھتے ہیں کہ دولت ہمیں کمال تک پہنچائے گی، نہیں پہنچاتی، ہم سمجھیں کہ شہرت ہمیں کمال تک پہنچائے گی، نہیں پہنچائے گی، ہم سمجھیں قدرت ہمیں کمال تک پہنچائے گی، نہیں پہنچائے گی. جو چیز ہمیں کمال تک پہنچانے والی ہے وہ ذات ہے جو خود با کمال ہے. لہذا کسی بھی راستے سے جائے انسان پہنچتا کہاں پر ہے؟ خدا کے اوپر. اب جو بحث ہم آگے چلانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ قلب کا کام، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قلب کیا کرتا ہے، جیسے ہی عقیدہ عقل میں تیار ہو کر قلب میں اترتا ہے، اگر قلب میں اترے گا انسان کے وجود سے آٹومیٹیکلی کیا ہوگا، اظہار ہوگا. ہر جس طرح کا عقیدہ آپ نے رکھا ہوا ہے آٹومیٹیکلی، اب دیکھیں بحث تھوڑی سی اگر آپ کو گزشتہ یاد ہو، انسان کا بدن اور روح، روح میں نفس بدن سے رابطے میں ہے، بدن کی وجہ سے اپنے تمام کام انجام دیتا ہے نفس، ڈیٹا کو کلیکٹ کرتا ہے پھر دیتا ہے عقل کو، عقل عقیدہ تیار کرتی ہے، وارد ہوتا ہے قلب میں. جب قلب میں اتر جاتا ہے، جیسے ہی عقیدہ قلب میں اترے گا، دوبارہ آپ کے بدن سے آٹومیٹیکلی اس کا اظہار ہوگا. لہذا بدن سے سفر شروع ہو کے بدن پر ختم ہوتا ہے. لہذا ہمارے بدن کی اہمیت اس دنیا میں، اصل اہمیت یہ ہے کہ بدن سے سلسلہ شروع ہوا اور بدن پر آ کر ختم ہوتا ہے. لیکن اب اس درمیان اگر میرے اندر غلط عقیدہ آ جائے گا، خود بخود غلط، خود بخود اظہار غلط ہوگا. کیسے ہوگا؟ میں آپ کو اس کا ایک مثال دیتا ہوں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. ایک معروف غلط عقیدہ، جو ہمارے ہاں موجود ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں معروف غلط عقیدہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، آپ نے دیکھا ہوگا، بھوتوں سے، چڑیلوں سے، پتہ نہیں اللہ بابا اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، ان سے ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کو ڈراتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے، ہم اتنا بچوں کو بچپن میں ڈراتے ہیں، اتنا ڈراتے ہیں کہ بچہ سننے کے بعد، اب دیکھتا تو نہیں چیزوں کو، سننے کے بعد کیا کرتا ہے، عقل میں اس میسج کو پہنچاتا ہے کہ بھائی کوئی چڑیل نام کی چیز ہوتی ہے، کوئی بھوت ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے، کثرت سے، اچھا پھر ہم دیکھتا ہے کہ اور لوگ بھی ڈر رہے ہیں، جب اور لوگوں کو ڈرتے ہوئے دیکھتا ہے تو بچہ بھی ڈرنا شروع کرتا ہے. होता क्या है, जिन जिन तो की बात नहीं है, जिनके ऊपर बहस कभी और करेंगे, भूत चुड़ैल अल्लाह बाबा पता नहीं क्या क्या इस तरह की जो भी चीज़ें आपने सुन रखी होंगी, इनके बारे में खौफ बच्चे के कल्ब में उतर जाता है। अब जब कल्ब में उतरा तो बच्चा इनसे डरना शुरू कर देता है। अब बड़ी अजीब सी बात है, देखें हालांकि भूत चुड़ैल इस तरह की कोई चीज़ वजूद नहीं रखती। मैंने बात दोबारा से एहतियातन दोहरा दूँ ताकि मिस इंटरप्रेट ना हो, अजिन्ना की बहत अलग है, अजिन अलग होते हैं। और ये याद रखिएगा कि जिन जो है उनको हमारी ज़िंदगियों में मुदाखलत की इजाज़त नहीं है। बाज़ उलमा हत्ता इस चीज़ के कायल हैं, वो कहते हैं जैसे बाकी जानवर हैवानात, अब आप देखें हैं नहीं हैवानात हमारे अतराफ़ में हैं या नहीं है, लेकिन क्या बाकी हैवानात हमारी ज़िंदगी में मुदाखलत करते हैं? नहीं करते। अच्छा, बाज़ छोटे मोटे हशरात या छोटे मोटे जानवर वो हमारी ज़िंदगी में मुदाखलत करते हैं। कब करते हैं? जब हम उनको मुदाखलत का मौका देते हैं। मसलन आप अपने घर में गंदगी रखेंगे तो लाल बेग आएंगे, मक्खियाँ आएंगी, चूंटियाँ आएंगी, चूहे आएंगे। कब आएंगे? जब आप अपने घर को गंदा रखेंगे। आप अपना घर साफ रखें ना मक्खियाँ आएंगी, ना लाल बेग आएंगे, ना चूंटियाँ आएंगी, ना चूहे आएंगे। इसी तरह से अजन्ना, अगर आप अपने आप को पाक और साफ रखेंगे, अगर आपके घर में कुरान की तिलावत होती है, अगर आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने वाले हैं, तो मेरी तरफ से लिख कर रख लें कि कोई आपको तंग नहीं कर सकता। हम कहाँ गुंजाइश देते हैं? जब हम नजिस रहते हैं, हमारे घर में नजासत रहती है, इन चीज़ों से, ये तमाम की तमाम जो चीज़ें यहाँ से वरूद पैदा करती हैं। वरना अजन्ना को हमारी ज़िंदगी में मुदाखलत की, मैं अजन्ना का मुखालिफ नहीं हूँ, अजन्ना होते हैं, यकीनन होते हैं, लेकिन बयाबानों में, अब इसको भी मैं नहीं कहता, हो सकता है किसी का वास्ता पड़ा भी हो, लेकिन आम तौर पर आप बंदा तलाश करेंगे आपको आम बंदा नहीं मिलेगा। ज़्यादातर अजन्ना से मुतालिक गुफ्तगू करने वाले ये जो आमिल बाबे और इस तरह के 2-4 लोग होते हैं, इनमें से 99% झूठे होते हैं। ये मैं आपको लिख के देता हूँ, इन्होंने ज़िंदगी में कभी न जिन देखा होता है, न जिन से मुलाकात की होती है। आम आदमी को बेवकूफ़ बनाने के लिए बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, ये भी करते हैं और हम भी बेवकूफ़ बन जाते हैं। वरना मैं बहुत वाज़े तौर पर आपको बता रहा हूँ कि अजन्ना से, अब मसलन मिसाल एक बात है, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मुझे बताइए, मैं आकर यहाँ पर आप शेर के शिकार की दास्तानें बयान करना शुरू कर दूँ कि जी मैंने शेर को यूँ किया, मैंने शेर से ऐसे मुलाकात किया, शेर ऐसा होता है, शेर वैसे होता है, तो आप मुझसे पूछेंगे मौलाना आपने ये जो शेर मेर की बातें करें, भाई पाकिस्तान में तो पाए नहीं जाते, तो किस चिड़ियाघर में आप तशरीफ़ ले गए, आपने वहाँ पर देखा और उस चिड़ियाघर में कितने थे, और पाकिस्तान के चिड़ियाघर में तो मामूलन शेर भी नहीं होते, तो आप किस अफ्रीका के, किस ऐसे मुल्क में गए जहाँ पर आपने जाके हैवानात को देखा जो आप ये बातें कर रहे हैं? अब बात यह कि अगर मैं आपसे, अब आप तलाश करें ना, कितने लोग हैं हमारे यहाँ जो शेर देखते हैं, कितने लोग हैं, कितने हैं आप बताइए, कितने नहीं है ना हमारे पास। इसी तरह से अजिन्ना को देख, मसलन आप शेर देखने वाला तो मान लेंगे कि नहीं होता बंदा, लेकिन जिन मान देखने वाले के ऊपर आप बात मान लें तो थोड़ी सी तरह इंसान कॉमन सेंस इस्तेमाल करे, 90% 99% झूठे होते हैं। अजिन्ना से मुलाकात करना इतना आसान काम नहीं है और ये चीज़ें, और अपने आप को वो ज़ाहिर ऐसे करते भी नहीं हैं, एक अलग बहस है। लेकिन ये जो अब चीज़ें हम जिनसे बच्चों को डराते फिरते हैं, मुर्दा जिंदा हो जाना और सरकटा और पता नहीं क्या क्या, इनमें से कोई भी चीज़ वजूद नहीं रखती, कुछ भी वजूद नहीं रखता। अब देखें ज़रा अक्ल के और कल्ब के कारनामे देखिएगा कि जब हम बार 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 तकरार करते हैं एक चीज़ जो वजूद नहीं रखती, असल वजूद नहीं रखती, उसका खौफ बच्चों के दिल में पैदा हो जाता है। अब ये एक अकीदा है, जब अकीदे की सूरत में कल्ब में पहुँच जाता है तो अब मसलन ये बच्चा, मसलन मैं बड़ा हो गया, मुझे बचपन में किसी ने डराया था, अब मैं अंधेरे में जाने से डरूंगा, तन्हा रहने से डरूंगा, ठीक है। अब मैं मसलन आलिम दीन हो गया, मैंने इतने तजर्बात को किताबें पढ़ी, बहुत कुछ पढ़ा, अब मुझे अब यकीन आ गया इस बात का कि भाई ये भूत वूत कुछ नहीं होता, चुड़ैल नहीं होती, मुर्दे जिंदा नहीं होते, यकीन तो हो गया मुझे, लेकिन अभी कल्ब के मरहले में दाखिल नहीं हुआ। लिहाजा आज आप मुझसे कहें, अच्छा भाई मौलाना आप समझते हो कि मुर्दे वर्दे जिंदा नहीं होते, आप रात को फला कब्रिस्तान में चले जाओ, तो भाई मैं नहीं जा सकता। सच्ची बात, क्यों क्यों नहीं जा सकता? इसलिए कि मुझे बचपन में किसी ने डराया और बचपन में वो अकीदा मेरे कल्ब के अंदर दाखिल हो चुका है, जब तक वो निकलेगा नहीं। अब मैं आपके सामने बहादुर बनने के चक्कर में चला जाऊं और वहां कोई बिल्ली कुत्ता जानवर गुजर गया और पता लगा मौलाना साहब सुबह कब्र बनी हुई है मौलाना साहब की, वहीं पर पता लगा जी हार्ट फेल हो गया डर के मारे, क्यों क्यों मेरे दिल के अंदर ये खौफ है? इसलिए कि बचपन में मेरे अंदर ये खौफ डाला गया, तकरार करके बार बार। अच्छा, मुझे डराने वाला खुद भी डरता है, तो मेरे अंदर क्या हुआ, बार बार देखने के बाद मैंने समझ लिया कि हाँ ऐसी कोई चीज़ होती है जो मुझे नुकसान पहुंचा सकती है। करते 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 क्या हुआ, मेरे अंदर खौफ कल्ब में चला गया। اب غلط عقیدہ اگر گیا ہوا ہے قلب میں تو کیا ہوگا؟ خود بخود تنہائی سے میں خود بخود ڈروں گا، اندھیرے سے خود بخود ڈروں گا، سنسان جگہ پر جانے سے خود بخود ڈر. یہ جو ڈر ہے یہ کہاں سے نکلا؟ خود بخود ہے نا بھائی، آپ بیٹھے بیٹھے تو نہیں ڈرتے نا، لیکن تنہائی کوئی اس طرح کی آواز، کچھ اس طرح کی چیز ہو، کیوں ڈرتے ہیں؟ اس لیے کہ قلب کے اندر موجود، حالانکہ چیز وجود ہی نہیں رکھتی. اب میں یہاں پہ دو سوال ایک ساتھ سالو کر کے آگے بڑھوں گا. ایک بعض نوجوان دوستوں سے کہا جاتا ہے کہ بھائی ہم نے جنت تو دیکھی نہیں، ہم نے خدا تو دیکھا نہیں، ہم نے فرشتوں تو دیکھے نہیں، تو ہم اس پہ کیسے ایمان لا سکتے ہیں؟ سوال ہے یا نہیں ہے؟ بچوں سے کیا بھی جاتا ہے، نوجوانوں سے کیا بھی جاتا ہے، بھائی تم نے خدا تو دیکھا نہیں، اس میں ایمان کیسے لا سکتے ہو؟ تو میں پلٹ کر یہ کہتا ہوں کہ آپ نے کبھی بھوت دیکھا؟ آپ نے کبھی چڑیل دیکھی؟ بتائیں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آج تک کبھی بھوت دیکھا ہو؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آج تک جن کا واسطہ کسی چڑیل سے پڑا ہو، جنہوں نے کسی مردے کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا ہو، کسی سرکٹے کو گھومتے ہوئے دیکھا ہو؟ اصل وجود نہیں رکھتی یہ چیزیں. لیکن اب ذرا سمجھیں انسان کو آپ، انسان کسی عقیدے سے متعلق اگر راستہ صحیح طے ہو رہا ہو تو اس عقیدے سے متعلق عقل میں اس کی پیدائش کرنے کے بعد اسے قلب میں اتار سکتا ہے گرچہ وہ چیز وجود ہی نہ رکھتی ہو، اور پھر اس سے متعلق خوف بھی انسان کے وجود میں ایجاد ہو سکتا ہے. اب یہ نیگیٹو ہے، یہ نیگیٹو ہے. دوسری بات جو آپ کو پہنچانی ہوئی کہ یہ یاد رکھے گا، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ازالت القلب ازالت الجبال احون من ازالت القلب. امام فرماتے ہیں پہاڑ کو ہٹا دینا، پہاڑ کو مٹا دینا آسان ہے، قلب کو مٹانا مشکل ہے. یعنی کیا؟ اگر غلط عقیدہ قلب میں چلا گیا ہے تو پہاڑ کو مٹانا آسان ہے، قلب کے صفحے پر سے اس غلط عقیدے کو مٹانا مشکل. اب امام مبالغے نہیں کیا کرتے، امام نے جو بات کہی ہے وہ امام بالکل ایسی ہے. لہذا اب آسان کام نہیں ہے کہ میں اس باطل خوف کو دل سے نکالوں، ایک پر حل. دوسری بات اب جو ہم نے اپنے غور کرنی ہے، دیکھیے بچے نے چڑیل بھی کبھی نہیں دیکھی، بھوت بھی نہیں، لیکن آپ نے ڈرایا اور آپ ڈر کے دکھایا تو بچے کے اندر خوف پیدا ہو گیا. یاد رکھیے گا، اب تھوڑی سی دیر کے لیے تصور کیجیے گا، اب یہ بچہ تنہائی میں جانے سے ڈرتا ہے نہیں ڈرتا؟ ڈرتا ہے. اندھیرے سے ڈرتا ہے یا نہیں ڈرتا؟ ڈرتا ہے. سنسان جگہ سے ڈرتا ہے یا ڈرتا ہے؟ کیوں ڈر رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کے دل میں خوف ڈالا گیا ہے. اب ہمارے لوگ، ہم جو سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بھائی ان چیزوں کو بچوں کو، بڑی مزیدار بات ہے، بھوت سے ڈرانے والے کو ہم نہیں روکتے کہ تم غلط چیز سے ڈرا رہے ہو، لیکن جب ہم بچے کو خدا کے خوف سے ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، قیامت کے عذاب سے ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، قبر کے عذاب سے ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، تو کہ تو ہمارے بچوں کو کیوں ڈرا رہے ہو اس سے؟ یہ چھوٹا سا بچے سے ڈرا رہے ہو؟ او بھائی، اس سے جس چیز سے ڈرا رہے ہیں وہ ہونے والی ہے، مگر آپ اپنے بچے کو چولہے سے ڈراتے ہیں یا نہیں ڈراتے؟ ڈراتے ہیں یا نہیں ڈراتے؟ میں اگر بچے کو یہ کہوں کہ بیٹے دیکھو یہ گرم چیز ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگانا، تو آپ آ کے میری گریبان پکڑو گے؟ روکو گے مجھے؟ کبھی بھی نہیں روکو گے. آپ کہو گے بھائی میرے بچے کو صحیح چیز سے ڈرا رہا ہے، اس چیز سے بچے کو نقصان ہو سکتا ہے. تو چوں اس لیے کہ آپ کو اس چولہے کی آگ سے تو اپنے بچے کو خطرہ نظر آ رہا ہے، وہ جو قیامت کی آگ ہے اس سے خطرہ نظر نہیں آ رہا ہے. یہ نظر آ رہا ہے خطرہ، وہ نظر نہیں آ رہا خطرہ کہ کتنا بڑا نقصان ہے وہاں پر. اسی طرح سے عزیزان من، اب دیکھیں ہوتا کیا ہے، ہوتا کیا ہے، ہم وہاں پر یہ سوچ کر، ارے بچہ ہے اس کو قبر سے ڈرانے کی کیا ضرورت، ارے یہ بچہ ہے اس کو قیامت سے ڈرانے کی کیا ضرورت. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بچہ بغیر کسی خوف کے جوان ہو رہا ہے نا، اسے خدا کا کوئی خوف ہی نہیں ہے، اسے گناہوں کا کوئی خوف ہی نہیں ہے. تو جب وہ بے خوف پیدا ہوتا ہے تو اب مجھے بتائیے کہاں سے اس کے اندر خوف آئے گا. اب اگر دیکھیے منفی خوف سے اپنے بچے کو بچائیے، میں پھر سے دہرا رہا ہوں، کتنے ہم جاہل ہیں کہ وہ بھوت چڑیل اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو وجود نہیں رکھتی ان سے تو ہم، اچھا آپ کہتے ہیں جی ہم تو نہیں ڈراتے، کس نے کہا نہیں ڈراتے؟ ہارر فلم گھر میں آ رہی ہوتی ہے، آپ نے کبھی بچوں کو روکا مت دیکھو یہ فضولیات ہیں؟ کبھی نہیں روکا ہم نے. اسی طرح سے اسی جگہ سے ایک مطلب اور آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس پہ غور کیجیے گا کبھی کہ کیوں یہ ڈراؤنی فلمیں اتنی کثرت سے بنائی جاتی ہیں. آپ کو حیرت ہوگی سن کر، ہالی ووڈ میں جتنی تعداد میں ایکشن فلمیں بنائی جاتی ہیں اس سے زیادہ ہارر فلم بنائی جاتی ہیں، اور بلینز آف ٹریلینز آف ڈالر جو اس پر خرچ کیا جاتا ہے. کیا اچھا، اب آپ کبھی اگر آپ کا اتفاق ہو آپ کچھ ہارر فلمیں دیکھیے گا، तो कुछ फिल्में देखने के बाद आपको पता लगेगा कि ये सारी एक ही जैसी होती हैं, कोई ख़ास उनमें फ़र्क नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं होता, सिर्फ चेहरे बदल के, थोड़ा सा आगे पीछे कुछ चीज़ों को बदल के, बाकी सब कुछ वही होता है, ये बिलीफ में सब कुछ वही होता है इनमें, सिर्फ ज़रा सा सीन, थोड़ी सी स्टोरी, थोड़ी सी बात बदल कर क्यों पेश की जाती हैं। अच्छा, किसी भी हॉरर फिल्म को आप आवाज़ बंद करके सुने, आवाज़ बंद करके देखें, तो आपको कॉमेडी फिल्म लगने लगेगी। वहाँ पर क्या करते हैं, आवाज़ के ज़रिए से, तेज़ आवाज़ों के ज़रिए से, अचानक आवाज़ों के ज़रिए, क्योंकि इन तमाम चीज़ों के इंसान के आसाब के ऊपर आसार है, इन आसार के ज़रिए से इस्तेमाल करके क्या करते हैं, खौफ को, एक जो चीज़ वजूद नहीं रखती, इंसानी कल्ब में उतारने की कोशिश की जा रही है। क्यों? इसलिए कि दुश्मन जानता है कल्ब में जब तक फजूलियात का खौफ मौजूद रहेगा, खुदा का खौफ कभी नहीं आ सकता, उन्हें पता है। अब दूसरी जानिब आप देखिए, अगर आपने अपने बच्चे को कब्र से डराया, कयामत में डराया, अल्लाह के अजाब से डराया, तो ये अजाब कब्र, और साथ साथ आपने ये भी बताया कि बेटे हर नफा और नुकसान अल्लाह के हाथ में है, फ़ायदा भी अल्लाह पहुंचाने वाला है, और याद रखना अगर तुमने नाफरमानी की तो अजाब में डालने वाला भी, यानी तकलीफ पहुंचाने वाला, नुकसान पहुंचाने वाला भी कौन है? अल्लाह, उसके हाथ में है नफा और नुकसान। अब ईमान से मुझे बताइए, जिस ज़माने में मैं अपने बच्चे को फजूलियात से डरा रहा था, अगर फजूलियात से डराने के बजाय मैं अपने बच्चे को अजाब कब्र से बचाऊँ, डराऊँ, अगर मैं अपने बच्चे को खुदा की मासियत से डराऊं, खुदा के अजाब से डराऊं, और इतना डराऊं, अच्छा सिर्फ एक मरहला है बच्चे को ज़बानी डराना, दूसरा मरहला क्या है, मैं खुद डर के दिखाऊं, अगर मेरा बच्चा मुझे अल्लाह के अजाब से हालत नमाज में रोता हुआ देखेगा, मुझे कांपता हुआ देखेगा, कोई गुनाह करते हुए मेरे पसीने छूटते हुए देखेगा, तब यकीन करेगा ना। अगर मैं ज़बानी कलामी तो बच्चे को सुनाता रहूँ कि बेटे डरो डरो, और ख़ुद झूठ बोलने से ना डरूँ, खुद चोरी करने से ना डरूं, खुद नमाज को तर्क करने से ना डरूं, मेरे अंदर कोई खौफ है ना, मेरे लिए नमाज तर्क करना कोई माना ना हो, तो मेरा बच्चा कहाँ से डरेगा? कभी भी नहीं डरेगा, कभी भी नहीं डरेगा। लिहाजा अज़ीज़ान मन, अगर लेकिन मैंने खौफ इसी तरह से अल्लाह का, अल्लाह के अजाब का, अल्लाह की मासियत का खौफ मैंने इसी तरह से अपने बच्चे के कल्ब में उतार दिया, तो अब मुझे बताइए कि जब ये बच्चा जवान होगा तो इसको नमाज पढ़ने के लिए मजबूर करने की ज़रूरत है? इसको बुराइयों से रोकने के लिए ज़रूरत है? किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। वो तन्हाई में इसी तरह से अल्लाह के अजाब से डरेगा जिस तरह से इस वक्त तन्हाई में चुड़ैलों और भूतों से डर रहा है, मासियत करते हुए इसी तरह से डरेगा जिस तरह से इस वक्त वो कब्रिस्तान में जाने से डरता है। तो हमने अगर अकीदे को सही माना में अपनी औलाद में ट्रांसफ़र किया तो हमारा, लिहाजा मैंने आपको याद होगा पहली गुफ्तगू में आपसे कहा था कि बच्चों के अकीदे का ज़माना बचपन में 7 से 14 साल के दरमियान में है। अगर मैंने 7 से 14 साल के दरमियान में बच्चे को कयामत का अकीदा समझा दिया, इसको सही माना में अल्लाह के अजाब से डरा दिया, ये एक ऐसा मोमिन बनकर जवान होगा जो हत्ता तन्हाई में भी अल्लाह की मासियत करने से डरेगा। लिहाजा अब ये अकीदा किसने बनाना और किसने उतारना है कल्ब में, ये हमारा और आपका काम है, हमारी, और कब करेंगे? जब हमारा अपना अकीदा सही होगा। लिहाजा अब एक छोटी सी मुश्किल बहस भी कर दूं आज की गुफ्तगू में, और ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, छोटी सी मुश्किल बहस। लेकिन मैंने जब ये बात कही कि देखें जिनों और भूतों का तो कोई वजूद है ही नहीं, हमारे बच्चे हमसे सवाल करते हैं, अक्सर सवाल करते हैं कि भाई खुदा का वजूद कहाँ है, तो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि याद रखिएगा कि खुदा के वजूद को आँखों से दर्क नहीं किया जा सकता, कानों से दर्क नहीं किया जा सकता, हत्ता खुदा को अक्ल से भी दर्क नहीं किया जा सकता, अक्ल का काम भी नहीं है। खुदा को दर्क करने वाली चीज़ कल्ब मोमिन है, कल्ब मोमिन कल्ब, वो कल्ब जिसके अंदर फिर खुदा के सिवा कुछ ना हो, जिसका मतलूब खुदा, वो कल्ब। और मैंने पिछली दफ़ा शायद अर्ज़ किया था आपको कि नफ्स और कल्ब के दरमियान में अक्ल है, जिक्र किया मेरे ख्याल से नहीं किया था, मैं दोहरा देता हूँ बात को, शायद कहीं और जिक्र किया था, इसको थोड़ा सा समझिएगा, मुश्किल बहस अगली दफ़ा के लिए छोड़ देता हूँ मैं। कल्ब मैंने बताया ना, नफ्स है और कल्ब, इनके दरमियान में अक्ल है। क्यों हम खुदा को दर्क करने में कामयाब नहीं हो पाते? उसकी एक असल वजह यह है कि अभी तक हम कल्ब के हिस्से में दाखिल ही नहीं हुए। हम अक्ल के मराहिल तक तो पहुंच जाते हैं, कल्ब के मराहिल में दाखिल नहीं हो पाते। क्यों? मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा और फिर बात को आगे बढ़ाऊंगा। ईरान में जब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने अमेरिकन एम्बेसी पर हमला किया। तो दास्तान बहुत तवील है, बस एक दो बातें करूँगा, कभी मौका रहा वैसे तो अर्ज करूँगा आपके खिदमत में। जब उन्होंने हमला किया तो पता लगा कि किस हद तक अमेरिकन एम्बेसी का काम जासूसी था और उन्होंने किस कदर मुदाखलत और क्या क्या किया था, वो सब की दस्तावेज़ मौजूद हैं। बड़ी अजीब गरीब चीज़ें पकड़ी गई थी, एक अपनी जगह पूरी कहानी है। आप कभी मौका मिले ईरान जाएँ तो ज़ियारात के अलावा तेहरान में वहाँ पे भी जाए अमेरिकन एम्बेसी। अब उसका नाम उन्होंने लाना जासूसी रखा हुआ है, लाना जासूसी यानी जासूसी का घोंसला, जासूसी का गढ़। तो वहाँ जाएँ तो विज़िट करें, आपको बड़ी मददगार चीज़ें पता लगेंगी। तो हम जब वहाँ गए विज़िट करने तो हमें भी एक चीज़ पता लगी कि वहाँ पर एम्बेसी में दो मसलन अगर ब्लॉक्स हैं, ये ब्लॉक बिल्कुल अलग है, ये ब्लॉक बिल्कुल अलग है, यहाँ क्या हो रहा है इनको नहीं पता, यहाँ क्या हो रहा है इनको नहीं पता। इनका यहाँ पर आकर एक कमरे के ऊपर, कमरा था बड़ा, हॉल समझ लें, ये इससे लिंक होता था, ये यहाँ से लिंक होता था, और ये दो मीटिंग के कमरे थे, एक इस तरफ और एक इस तरफ। इन दोनों कमरों के दरमियान में उन्होंने एक सेफ, तिजोरी होती है, एक तिजोरी टाइप की एक चीज़ लगाई हुई थी। और इन दोनों का राबता, दोनों कमरों का राबता उस तिजोरी के ज़रिए से होता था। अब ये सारी अपनी मीटिंग करने के बाद जो कुछ भी तय करते थे उसे एक कागज़ों पर लिखकर या जो भी करके लिखने के बाद तिजोरी में रख देते थे, और ये वाले अफराद जो है वो खोल के उस अपना निकाल लेते थे, उनका लिखा हुआ और अपना लिखा हुआ रख देते थे, तो वो वहाँ से निकाल लेते थे। अच्छा, अब इसकी वजह से क्या था, किसी को ये ही नहीं पता था कि किसकी क्या ड्यूटी है, सिर्फ ख़ास ख़ास लोगों को पता था कि किसकी क्या ड्यूटी है, वरना इस तरफ वाले लोग उन तरफ को नहीं जानते, उस तरफ वाले ये नहीं जानते। अच्छा, अब ये जो तिजोरी थी इसका सिस्टम ऐसा था कि अगर इसका उस तरफ वाला दरवाज़ा खुला हुआ है तो ये खुल ही नहीं सकता। इसका लॉक कब खुलेगा, जब ये वाला दरवाज़ा लॉक होगा, मतलब जो होगा। इस वजह से लोगों को पता ही नहीं लगता था, यानी एक दूसरे को देख पाएंगे तो पता लगेगा ना कि उस तरफ कौन है। अब उस तरफ वाले कमरे के लिए आपने अगर उनसे कोई बात करनी है या उनको कोई पैगाम पहुँचाना है, आप कागज़ पर लिखेंगे, तिजोरी का दरवाज़ा खोलेंगे। अब जैसे ही आप तिजोरी खोलेंगे वहां लॉक हो जाएगी, आप दरवाजा नहीं खोल सकते। जब तक वो दरवाजा खुला है इसका लॉक नहीं खुलेगा, ठीक हो गया। अब वो करते क्या थे, तरीकाकार ये था कि जैसे ही राबता अगर करना है तो पहले लॉक खोलो, ठीक है, जैसे ही लॉक खुलेगा वहां पे लॉक हो जाएगा, फिर दरवाजा खोल के वो रखेंगे, जब तक ये दरवाजा बंद नहीं करेंगे ये नहीं खुलेगा। बात समझ में आ गई कि इस वजह से दोनों के दरमियान में राबता नहीं होता था, दोनों के दरमियान में कोई राबता नहीं हो पाता था। नफ्स और कल्ब के दरमियान में अक्ल इसी तरह की एक तिजोरी है, गौर कीजिएगा बात पर, नफ्स और कल्ब के दरमियान में अक्ल ऐसी ही एक तिजोरी है जिसका एक दरवाजा नफ्स की तरफ खुलता है, एक दरवाजा कल्ब की तरफ खुलता है। अगर आप चाहते हैं कि अपने कल्ब से, अपने अक्ल से कल्ब की तरफ सफ़र करें और आपको कल्ब की चीज़ें समझ में आना शुरू हो, तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, नफ्स का दरवाज़ा बंद नहीं, लॉक करना। जब तक लॉक नहीं करेंगे नफ्स को तब तक कल्ब का दरवाज़ा हम क्यों नहीं दर कर पाते, इसलिए कि अभी तक हमने अपने नफ्स का दरवाज़ा, नफ्स का दरवाज़ा मतलब ये नहीं होता कि नफ्स को मार दो बिल्कुल ख़त्म कर दो, नहीं, नफ्स की चाबी उसको कंट्रोल करना है, बस कंट्रोल। जैसे ही आपने नफ्स को कंट्रोल किया नफ्स लॉक हो जाएगा, और जैसे ही आप यकीन करें नफ्स लॉक हुआ आपका कल्ब खुलना शुरू हो जाएगा, और जब कल्ब खुलता है तो फिर खुदा की तरफ इंसान का सफर तय होता है। लिहाजा अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम से जब किसी ने पूछा कि मौला आप अनदेखे खुदा को इबादत करते हैं, अब उसका जहन क्या कह रहा है, अनदेखे खुदा से यहां पर उसकी मुराद क्या है कि जो चीज वजूद ही नहीं रखती, ऐसी बात है ना, जो चीज वजूद ही नहीं रखती। इमाम ने कहा नहीं, मैं ऐसे खुदा की इबादत नहीं करता, मेरा खुदा वजूद रखता है। तो उसने एकदम हैरान होकर पूछा, उसने कहा आपने देखा है अपना खुदा, आपने कहा हाँ, उसने कहा देखा है, क्या वाकई दिखाई देता है? आपने कहा तो क्या समझ रहा है कि मेरा खुदा इतना ज़ईफ है कि आँखों से दिखाई देगा? जो आँखों से दिखाई दे वो ज़ईफ चीज़ होती है, मेरा खुदा ज़ईफ नहीं है। मेरा खुदा वो नहीं है जो आँखों से दिखाई दे, मेरा खुदा वो है जो कल्ब से दिखाई देता है। अब कल्ब खुलेगा, कल्ब को हम दर्क करना शुरू करेंगे तो हम उस मरहले में दाखिल हो पाएंगे कि जहाँ पर हम खुदा को दर्क कर पाएँ। खुदा का इहाता कोई नहीं कर सकता, खुदा की मारिफत कोई हासिल नहीं कर सकता, लेकिन जब कल्ब, उसने कहा है कि मेरा कोई हरम नहीं है मगर क्या है, कल्ब मोमिन। कल्ब मोमिन को हरम कहने से मुराद क्या है? वो चीज़ जो खुदा को दर कर सकती है, मोमिन का कल्ब है। दुआ करते हैं परवरदिगार के हुजूर में बार इलाहा बहक मोहम्मद वाल मोहम्मद, हमें दीन समझने और उस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमा। बहक मोहम्मद वाल मोहम्मद, दीन के हकीकी वारिस इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर में तअज़ील फरमा। बहक मोहम्मद वाल मोहम्मद, मोमिनीन दुनिया में जहाँ जहाँ मौजूद हैं उन सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रख, उनकी परेशानियों को दूर फरमा, मुश्किलात को आसान फरमा। बहक मोहम्मद वाल मोहम्मद, जितने भी मोमिनीन बीमार हैं उन सबको शिफा कामला आजिल इनायत फरमाए। जितने बेगुनाह असीर हैं उन सबको रिहाई इनायत फरमा। जहाँ जहाँ मोमिनीन बातिल से बरसर पैकार हैं उनको नुसरत व कामयाबी इनायत फरमा। तमाम उलमा मराज इज़ाम की हिफाजत फरमा। हम सबको इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के अहवान अंसार में शुमार होने की तौफीक इनायत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस्समीउल अलीम, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।